रात धीरे धीरे और गहरी होती चली गई। हवेली में लौटते समय पूरे रास्ते आर्यन के दिमाग में वही दृश्य घूमता रहा। श्यामली के आंसू, विश्वनाथ की खामोशी और वो अजीब सा दर्द जो उसके सीने में लगातार बढ़ता जा रहा था। जब वो हवेली पहुंचा तो आधी रात बीत चुकी थी। घर के ज्यादातर लोग सो चुके थे। वो धीरे से अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। अदिति अब भी जाग रही थी। बेड के सिरहाने लगी हल्की पीली लाइट कमरे में एक शांत सा माहौल बना रही थी। जैसे ही उसने आर्यन को देखा, तुरंत उठकर बैठ गई। आ गए? आर्यन ने सिर्फ सिर हिलाया। सब ठीक है? उसने फिर पूछा। आर्यन कुछ पल चुप रहा। उसका मन कर रहा था कि सब बता दे, तस्वीरों के बारे में, श्यामली के बारे में, विश्वनाथ के बारे में, आज रात जो कुछ हुआ था उसके बारे में। लेकिन अगले ही पल उसने घड़ी की तरफ देखा। रात के लगभग 2 बज रहे थे। और सच कहे तो वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर हुआ क्या था। वो कैसे किसी और को समझाता? हाँ, बस थोड़ा दोस्त का मामला था, उसने धीमे स्वर में कहा। अदिति ने गौर से उसका चेहरा देखा। वो उसे हमेशा से जानती थी। इतना जरूर समझ गई थी कि बात दोस्त की नहीं है, कुछ और है, कुछ ऐसा जो आर्यन उससे छुपा रहा है। लेकिन उसने जोर नहीं दिया। ठीक है, वो बस इतना ही बोली। आर्यन उसके पास बैठ गया, लेकिन आज उसकी आंखों में वो सुकून नहीं था जो आमतौर पर अदिति के साथ होने पर आ जाता था। उसकी नज़रें बार बार कहीं खो जा रही थीं। अदिति ये सब देख रही थी, और जितना वो चुप था उतनी ही उसकी बेचैनी बढ़ते जा रही थी। उस रात दोनों एक ही कमरे में थे, लेकिन दोनों के बीच एक अनकही दूरी पैदा हो चुकी थी। उधर, विश्वनाथ उस रात हवेली वापस नहीं गया। वो अपने बंगले के स्टडी रूम में अकेला बैठा था। टेबल पर आधी भरी कॉफी कप की ठंडी हो चुकी थी, लेकिन उसका ध्यान उस पर नहीं था। उसकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य घूम रहा था, श्यामली का रोना और आर्यन का उसे गले लगाना। उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि हवेली अब उसे अपनी नहीं लगती। वो घर जहां उसने जिंदगी के इतने साल बिताए थे, आज अचानक पराया लगने लगा था। जैसे हर दीवार उससे कोई सवाल पूछ रही हो और उसके पास किसी सवाल का जवाब नहीं था। रात के 3 बजे तक भी वो उसी कुर्सी पर बैठा रहा, फिर बिना सोए वहीं आंखें बंद कर लीं। उधर, श्यामली अपने कमरे में अकेली बैठी थी। कमरे की लाइट बंद थी, सिर्फ खिड़की से आती हल्की चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो बिस्तर के किनारे बैठी लगातार रो रही थी। आज जो डर उसे महसूस हो रहा था, वैसा डर उसने वर्षों में कभी नहीं महसूस किया था। अतीत, जिसे उसने हमेशा के लिए दफना दिया था, आज अचानक उसके सामने खड़ा था। और अब विश्वनाथ सब जान चुका था, या कम से कम इतना जान चुका था कि सवाल उठने शुरू हो जाए। उसने अपने आंसू पोंछे, लेकिन अगले ही पल फिर रो पड़ी। अब क्या होगा? उसके होंठ कांप उठे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विश्वनाथ अगला कदम क्या उठाएगा। वो उससे बात करेगा, उसे छोड़ देगा, उससे नफरत करेगा, या फिर उससे भी भयानक कुछ। इन सवालों ने पूरी रात उसे सोने नहीं दिया। अगली सुबह, तीनों की दुनिया सामान्य दिख रही थी, लेकिन भीतर से कोई भी सामान्य नहीं था। विश्वनाथ सुबह जल्दी उठ गया। शायद उसने पूरी रात ठीक से सोया भी नहीं था। तैयार होकर वो सीधे ऑफिस निकल गया। उसके चेहरे पर वही सख्त भाव थे जिन्हें देखकर कोई भी समझ जाता कि आज उससे दूरी बनाकर रखना ही बेहतर है। ऑफिस पहुंचते ही उसने अपनी सेक्रेटरी को बुलाया। आज मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, उसकी आवाज़ बिल्कुल ठंडी थी। कोई भी नहीं सर, कोई भी नहीं। वो एक पल रुका, फिर बोला, ये बात श्यामली को भी बता देना। सेक्रेटरी ने तुरंत सिर हिला दिया। कुछ देर बाद श्यामली ऑफिस पहुंची। वो बाहर से सामान्य दिखने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों की सूजन बता रही थी कि रात कैसी बीती है। जैसे ही उसने अपने केबिन में कदम रखा, सेक्रेटरी अंदर आई। मैम, सर ने कहा है कि आज उन्हें कोई डिस्टर्ब न करे। श्यामली का चेहरा एक पल में उतर गया। दिल में हल्का सा दर्द उठा, फिर अगले ही पल गुस्सा। अच्छा, उसने बस इतना कहा। सेक्रेटरी चली गई। श्यामली कुर्सी पर बैठ गई। उसका मन हुआ कि अभी जाकर विश्वनाथ से बात करे, पूछे कि आखिर वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। लेकिन फिर उसने खुद को रोक लिया। ऑफिस इसके लिए सही जगह नहीं थी, और शायद अभी समय भी सही नहीं था। उसने गहरी सांस ली। घर पर बात करेंगे, वो खुद से बुदबुदाई। लेकिन दिल की बेचैनी कम नहीं हुई। करीब 1 घंटे बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मे आई कम इन?
श्यामली ने सिर उठाया। दरवाजे पर आर्यन खड़ा था। वो अंदर आ गया। हाथ में कुछ फाइलें थी। नए प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी थी, उसने कुर्सी खींचते हुए कहा। श्यामली ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। आर्यन कुछ समझा रहा था, प्रेजेंटेशन, क्लाइंट, मीटिंग, नए टारगेट, लेकिन उसके शब्द जैसे श्यामली के कानों तक पहुंच ही नहीं रहे थे। उसके दिमाग में सिर्फ पिछली रात घूम रही थी, एल्बम, तस्वीरें, विश्वनाथ का चेहरा, उसकी खामोशी और वो डर। अचानक उसकी आंखें भर आईं। आर्यन बोलते बोलते रुक गया। श्यामली, उसने हैरानी से पूछा। श्यामली ने सिर झुका लिया, लेकिन आंसू रुक नहीं पाए। एक बूंद, फिर दूसरी, और फिर लगातार। आर्यन तुरंत अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। अरे, उसकी आवाज में घबराहट आ गई। क्या हुआ? श्यामली कुछ बोल नहीं पाई, बस चुपचाप रोती रही। आर्यन तुरंत टेबल से पानी का ग्लास उठाने लगा। रुको, उसने धीरे से कहा, पानी पी लो। उसके चेहरे पर सच्ची चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसी समय विश्वनाथ अपने केबिन से निकला था। काफी देर से वो खुद को रोक रहा था, लेकिन आखिरकार उसने फैसला किया कि श्यामली से बात करनी ही होगी। कुछ बातें अब और नहीं टाली जा सकती थी। वो लंबे गलियारे से होकर उसके केबिन की तरफ बढ़ा। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था, और तभी उसकी नजर अंदर गई। वो वहीं रुक गया। अंदर श्यामली रो रही थी, और उसके सामने खड़ा था आर्यन, जो घबराया हुआ उसे पानी दे रहा था। उसके चेहरे पर चिंता थी, वही चिंता जो किसी अपने के लिए होती है। विश्वनाथ की उंगलियां धीरे धीरे मुट्ठी में बदल गईं। दिल के भीतर फिर वही पुराना दर्द जाग उठा। कल रात उसने खुद को समझाया था, लेकिन आज वही दृश्य फिर सामने था, और इस बार ऑफिस के बीचों बीच। उसकी सांसें भारी होने लगीं। एक पल के लिए मन हुआ कि अंदर जाए, कुछ कहे, सब खत्म कर दे, लेकिन अगले ही पल वो रुक गया। उसकी आंखों में दर्द उतर आया, गुस्से से ज्यादा दर्द, टूटन से ज्यादा बेबसी। वो कुछ सेकंड तक दरवाजे के बाहर खड़ा रहा, फिर बिना आवाज किए पीछे मुड़ गया, धीरे धीरे वापस चल पड़ा। अंदर मौजूद दोनों लोगों को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कोई उन्हें देखकर जा चुका है। गलियारे में चलते हुए विश्वनाथ की आंखें खाली हो चुकी थीं। उसे पहली बार महसूस हुआ, शायद लड़ाई तस्वीरों से नहीं थी, लड़ाई उन भावनाओं से थी जिन्हें कोई भी स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर रहा था, और यही बात उसे सबसे ज्यादा डरा रही थी।